मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 21 जून 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं महिमा द्विवेदी, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, सुशांत रंजन, आपका गांव है झिकरुआ, जिला है नवधा बिहार से, और सुमन, आपका गांव है जांडवला, जिला है सिरसा हरियाणा से। तो महिमा, सुशांत और सुमन, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हालांकि मैंने टाइटल चुना है किसानों की आय दुगुनी करने की बात जो सरकार करती है उसको लेकर के वह विषय चुना है, लेकिन इनफैक्ट मैं इसके माध्यम से आप सबसे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो पढ़ाई करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत होती है या सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत होती है मैं उसके उदाहरण के जरिए या एक दो और उदाहरणों के जरिए उस विषय पर बात करूंगा, लेकिन मेरा जो शीर्षक है आज के मुख्य विषय का वह किसानों की आय दुगनी, राइट। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरे न्यूज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। नो डाउट योग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि योग एक फिलॉसफी भी है, याद रखिए फिलॉसफी भी है ना, एक जीवन शैली भी है और एक मेडिकल साइंस भी है, और ये सारे आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस के पार्ट भी हैं। ये बात अलग है कि एग्जामिनेशन में कितना पूछा जाएगा कितना नहीं पूछा जाएगा, तो आपको योग पर तो थोड़ी सी तैयारी कर ही लेनी चाहिए, और खासकर आप पतंजलि को तो थोड़ा सा पढ़ ही लें, पतंजलि के क्या सिद्धांत थे, मूलभूत सिद्धांतों को आप केवल जान लें। मैं आपको इसके बारे में दो बातें खासकर बताना चाहूंगा। पहली बात मित्रों कि इसके दो भाग होते हैं, टू पार्ट होते हैं, यह मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है ना, मैं एकेडमिक इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, जहां तक जो कुछ भी मैंने समझा है। एक है इसका दैहिक भाग, शारीरिक पक्ष, जिसमें आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के योग कराए जाते हैं, आसन कराए जाते हैं, तो इससे एक तरह से एक फिजिकल फिटनेस के लिए ये चीजें हैं, तो बट नेचुरल है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कभी भी हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसके प्राण का पार्ट है, यानी कि ब्रीदिंग, सांस। प्राण का मतलब है वायु, है ना, प्राण का मतलब जीवन नहीं है, वायु से यहां है, प्राणायाम यानी कि श्वास लेने की पद्धति। श्वास लेने की पद्धति के जरिए, देखिए फिजिकल योग के जरिए, योगासनों के जरिए हम अपने शरीर को ठीक रखते हैं, हमारे जो जोड़ हैं और जो हमारे मसल्स हैं ये परफेक्ट स्थिति में रहते हैं, और प्राणायाम के जरिए हम अपने शरीर के आंतरिक पक्ष को स्वस्थ रखते हैं, किडनी है, लीवर है, ब्लड सर्कुलेशंस हैं, इन सारी चीजों को हम बेहतर बनाते हैं। ये पहली बात हुई मित्रों। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ज्यादातर ये विवाद उठता है कि यह हिंदू धर्म का हिस्सा है, फिलॉसफी धर्म से जुड़ा हुआ तत्व नहीं है, फिलॉसफी तो एक विवेक है, एक विवेचना है। हाँ, वो किसी ने की, जो फिलॉसफर है वो हिंदू था, मुस्लिम था, ईसाई था, क्या था वो बहुत अलग बात है, लेकिन उसने जो फिलॉसफी दी है, अगर उसने धार्मिक रूप से उस तरह से बात नहीं कही है, किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के उसकी विवेचना नहीं की है, तो फिलॉसफी का संबंध मानव जीवन से है, और योग ऐसा ही है, जो भी मनुष्य है उसके लिए योग करणीय है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा और अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुनने वाला जो वर्ग है वो युवा है और उनके सामने लंबा भविष्य है। दोस्तों, आपको कुछ समय, मैं ज्यादा समय आपसे नहीं मांग रहा हूं, हार्डली 15 to 20 minutes, 15 से 20 मिनट, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, इसमें से मुझे लगता है कि 15-20 मिनट आप निकाल सकते हैं, आपको देना चाहिए। आप भले योग वाले पक्ष को न दें, योगासन वाले पक्ष को न दें, क्योंकि आप यंग हैं, अगर आप एक्टिव रहते हैं तो दिन भर, लेकिन जो प्राणायाम वाला पक्ष है उसमें आप 10 मिनट दें। इसका प्रभाव मैंने खुद अपने सिर दर्द की बहुत ही पिक्यूलियर बीमारी में देखा है। मुझे बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता था, मुझे मेरा गला बहुत खराब रहता था। मैंने इसका बहुत इलाज कराया, हर तरह के इलाज कराए, लेकिन इससे मुझे मुक्ति नहीं मिली। और ये मुझे याद है कि सिर दर्द मैं जब 5-6 वर्ष का था तब से हो रहा था, और इससे मुक्ति मुझे प्राणायाम के माध्यम से आप यूं कह लीजिए 1.5 साल पहले मिल गई है। और वो भी मुझे लगता है कि जब मैंने करना शुरू किया तो 6 महीने के अंदर अंदर यह बीमारी खत्म हो गई। मुझे नहीं मालूम है कि कैसे खत्म हुई, क्या हुई, क्या उसका असर हुआ, मैं उसकी वैज्ञानिक विवेचना नहीं कर सकता, लेकिन जो परिणाम मेरे सामने हैं मुझे लगा कि मुझे आप सबको ईमानदारी के साथ इस योग दिवस पर बताना ही चाहिए। खैर मित्रों, अब मैं आता हूं दूसरी खबर पर, और वो है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। मित्रों, इसे आप किसानों की आय दुगुनी के तहत जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज के मुख्य विषय के रूप में, उससे जोड़कर देखें, या यूं आप कह लीजिए कि मुख्य विषय की शुरुआत हो गई है। राइट, न्यूज में आपने कुछ चीजें सुनी और फिर आज के न्यूज पेपर में आपने कुछ बातें पढ़ी जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शासन से संबंधित है। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, वहां से हम चीजों को जानने, समझने, पढ़ने और याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको सीमेंटेड कौन करता है, यानी कि उसको मजबूत कौन बनाता है, व्यवहारिक रूप में वो हमारे दिमाग में कौन सी चीज है जो इसे डालती है, तो मुझे लगता है वो अखबार या घटनाएं जब इस तरह की घटित हो जाती हैं। तो अब राज्यपाल शासन वहां लागू हो गया, ये राज्यपाल शासन लागू हुआ है, वहां के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण, याद रखिए वो राष्ट्रीय आपात स्थिति नहीं है, वो राज्य में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया, क्योंकि कोई सरकार नहीं है, बनाने की स्थिति में नहीं है कोई भी सरकार, सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए और वो किसी के पास अभी नहीं है, तो राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि न्यूज में यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के प्रमुख राज्यपाल हो गए हैं, राइट। तो अब आपको यहां थोड़ा सा रुकना चाहिए कि तो इससे पहले सरकार के प्रमुख कौन थे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि महबूबा मुफ्ती जी थी, वो चीफ मिनिस्टर थी, वो राज्य सरकार की प्रमुख थी, यानी कि राज्य के प्रमुख तो राज्यपाल है लेकिन राज्य सरकार के प्रमुख जो है वहां के चीफ मिनिस्टर है, राइट। फिर आपने अखबारों में पढ़ा होगा आज के कि वहां की जो विधानसभा है वो निलंबित कर दी गई है, निलंबित कर दी गई है, यानी कि जो विधानसभा है वो अस्तित्व में है, विधानसभा भंग नहीं हुई है, वो है, लेकिन उसके से अधिकार ले लिए गए हैं, मतलब अब वो उस तरीके से काम नहीं करेगी जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती थी, लेकिन जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिन्हें हम एमएलए कहते हैं उनका अस्तित्व अभी है, वो अभी भी उस राज्य के एमएलए हैं, निलंबित की गई है, भंग नहीं की गई है। तो इससे फिर से जो संविधान में हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं कि राज्य में अगर राज्यपाल शासन लागू किया गया तो आवश्यक नहीं है कि विधानसभा भंग ही हो जाए, ये तो राज्यपाल के ऊपर है कि वो क्या सिफारिश करता है। अगर राज्यपाल कहता है कि राज्य यहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो फिर अब राष्ट्रपति देखेंगे कि भंग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो विधानसभा निलंबित है, यानी कि देख रहे होंगे कि शायद आगे चलकर के सरकार बनाई जा सके, नहीं बन पाए, या जो भी कैलकुलेशन होगा, एक राजनीतिक समीकरण होते हैं, वो चीजें देखी जाती हैं, उसको राज्यपाल देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, फिर वो निर्णय लेंगे। आगे चलकर के हो सकता है कि ये निलंबन जो है वो भंग होने में तब्दील हो जाए, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, ये इसका दूसरा पक्ष है। तीसरा, न्यूज में आपने कल, अगर आपने न्यूज डीडी न्यूज सुनी हो या फिर आज अखबारों को ध्यान से पढ़ा हो, याद रखिए ध्यान से पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं, तो कल भी मैंने यही कहा था आपसे कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कुछ जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनमें हम किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए और उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। जो अनुच्छेद 356 है वो इसी तरह का एक टॉपिक है। न्यूज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां एक चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं राज्य के, जो राज्यपाल के साथ काम करेंगे, और वो छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर सुब्रमण्यम जी, उनकी नियुक्ति की गई। अब आप देखिए कि छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर को कहां भेजा जा रहा है, जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है, राइट। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि अपॉइंटमेंट किसने की है, अब देखिए न तो ये अपॉइंटमेंट विधानसभा ने, जम्मू कश्मीर के विधानसभा ने की है जबकि वो अस्तित्व में है, और न ही यह अपॉइंटमेंट राज्यपाल ने की है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट कर लिया हो कि भाई हमारे मेरे पास इस ऑफिसर को आप भेज दीजिए। यह अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने किया है, तो यहां भी आपको एक तथ्य मिल गया। अब ये चीजें किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जब ये हो जाएगा तो उसका ये नियुक्त करेगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। वहां तो सिद्धांत दिए हुए हैं, अब उन सिद्धांतों को आप इंप्लीमेंटेशन फॉर्म में देखें कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से देखें किसानों की आय के बारे में जो न्यूज है, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट किसानों से बात की है आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। किसानों की आय दुगुनी करनी है, ये बहुत समय से सरकार का एक वायदा है भारत के किसानों के प्रति कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। ठीक है, अब किसानों की आय दुगुनी करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय किए जा रहे हैं और लगातार अखबारों में उनके बारे में खबरें छपती भी रहती हैं। लेकिन कल न्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, यानी कि वह हाईलाइट आपके होनी ही चाहिए आपके आंसर में, और वह यह है कि इस साल का जो बजट है, कृषि बजट है, उसको दुगुना कर दिया गया है। लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए कुछ इस तरह का आंकड़ा था, दुगुना कर दिया गया है। अब यह एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत ही सरल है, हम पढ़ लेंगे सुन लेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा भी, लेकिन होता क्या है कि हो सकता है कि जब हम आंसर लिख रहे हों तो ये फैक्ट हमारे दिमाग से गायब हो जाए, उस समय हमें तुरंत न सूझे, जबकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई कृषि बजट दुगुना किया गया है। दुगुना करना कोई कम बड़ी बात नहीं है, ठीक है इसी से किसान की आय दुगुनी नहीं हो जाएगी, लेकिन बजट के प्रभाव आगे चल करके तो पड़ेंगे। भाई आपने कृषि क्षेत्र के बजट दुगुना कर दिया तो इसमें कुछ हिस्सा लोगों को सस्ते कीमत पर ऋण उपलब्ध कराना होगा, कुछ हिस्सा सब्सिडी देने में होगा, कुछ हिस्सा मतलब अलग अलग उपाय होंगे, और ऐसे उपाय होंगे जिनका प्रभाव किसानों के जीवन पर पड़ेगा, किसान की आय पर पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट है। अब अगर ये फैक्ट हम मिस कर जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, यूं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती कहना चाहिए, सही शब्द नहीं है, यूं कह लीजिए कि हमारा उत्तर उतना ठोस नहीं हो पाता है। मित्रों, मैं आज आपसे इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूं, मैं थोड़ा इधर भी आपको इशारा कर दूं, इसलिए कि कल मुझे मेल एक मिला, आप ही में से किसी मित्र का मेल था, और उसमें उन्होंने खासकर मैंने अभी जो एक वीडियो डाला हुआ है प्री एग्जामिनेशन के रिव्यू को लेकर के, तो उसमें उन्होंने बड़ी नाराजगी मतलब व्यक्त की है कि ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, और आपने पता नहीं कैसे उन्हें सरल मान लिया है। और उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया, और उदाहरण ये दिया कि उसमें एक स्थानकवासी शब्द आया था, आपने देखा होगा जैन धर्म को लेकर के, बोले ये तो मैंने देखा किताबों में कहीं है ही नहीं और आपने इसे सरल मान लिया है। ठीक है, उनकी बात सही हो सकती है, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस किताब में देखा, दूसरी किताबों में हो सकता है कि इसका उल्लेख हो, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा, तो सिविल सर्विस की भी तैयारी और सूक्ष्म दृष्टि से ही जुड़ी हुई बात है, और वो ये कि आप जो जैन धर्म को जो मानते हैं, सामान्य साई व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो, आप उनसे जाकर के बात कीजिए और कहिए कि भाई स्थानकवासी क्या के बारे में तुम कुछ जानते हो, ये क्या होता है, देखिए वो बता पाता है कि नहीं बता पाता है, वो बता देगा आपको स्थानकवासी क्या है। अगर जैन धर्म का सामान्य व्यक्ति, उसका पालन करने वाला, स्थानकवासी शब्द को जान रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही कॉमन शब्द है, क्योंकि इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, स्थानकवासी कोई फिलॉसफी नहीं है। खासकर जैन धर्म के जो दो मुख्य संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसका एक उप संप्रदाय है स्थानकवासी, जो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, और स्थानकवासी शब्द इसलिए पड़ा है कि जो उनके मुनि, जैन मुनि वगैरह होते हैं, उनको रुकने की जगह जो वो देते हैं वो पब्लिक के बीच में देते हैं, लौकिक स्थानों पर देते हैं, ये नहीं कि वो जंगलों में जाकर के रहेंगे, वो कहते हैं कि नहीं आपका जो स्थान है वो हम लोगों के बीच में है और हम लोगों को उपदेश दीजिए, जीवन से जुड़ा हुआ उपदेश दीजिए, तो वो स्थानकवासी कहलाने लगे। ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। जैसे बौद्ध धर्म को लेकर के एक शब्द आया था मैत्रेयी, मतलब मैत्रेयी शब्द आपने देखा होगा, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया, हो सकता है ये किताबों में नहीं दिया हो, लेकिन भोपाल के अपने प्रिय श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा कि वो कोलार रोड, जो खासकर 4 इमली से जो तिराहा है वहां से जब कोलार रोड के लिए आप जाते हैं तो राइट साइड में थोड़ी ही दूर आधा पौन किलोमीटर जाने के बाद आपको एक मंदिर मिलेगा जो साफ लिखा हुआ है मैत्रेयी बुद्ध, मंदिर ही मैत्रेयी बुद्ध का है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और बौद्ध दर्शन आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इतनी जिज्ञासा तो होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि तो होनी चाहिए कि भाई ये मैत्रेयी बुद्ध क्या है, जरा सा हम देखें तो जा करके समझें तो कि भाई ये बुद्ध तो हमने सुना था, गौतम बुद्ध तो था, ये मैत्रेयी बुद्ध क्या हो गया और उनका मंदिर भी बन गया। तो मित्रों, सिविल सर्विस के लिए इनफैक्ट इस तरह की दृष्टि की जरूरत होती है, और जब हमारे पास वह दृष्टि नहीं होती तो फिर स्वाभाविक है कि हमें लगेगा कि ये तो बहुत कठिन है और ये बहुत ही पता नहीं कहां से पूछ दिया गया है, और हमें अगर मालूम होता है तो वही पता लग जाता है, लगता है कि यार ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। तो मित्रों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से दो दोस्तों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और ये दो मित्र हैं रवि प्रताप सिंह और अपूर्व पांडे कोलकाता से। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।